सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमामि बढ़मानम तिथम धम्मस्य कर्तारम। सार परमागम का गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, जिसमें सामान्य गे की बात हुई, अब विशेष गे की चर्चा आरंभ है। 127वीं गाथा से लेकर 144वीं गाथा तक एक विशेष गेयाधिकार का प्रकरण है। इसकी जो विषय वस्तु है वो अपेक्षाकृत बहुत सामान्य है, और उससे थोड़ा भी धर्म में जो रुचि रखते हैं, ऐसे जैन दर्शन के जो लोग हैं उनको उसकी सबकी जानकारी है। फिर भी क्योंकि इसमें जीवादिक छह द्रव्यों का वर्णन है, तो जो पंचास्तिकाय का विषय है, जो द्रव्य संग्रह में पढ़ाया जाता है, छड़ाला में पढ़ा है, तत्वा सूत्र में पढ़ा है, जो और ग्रंथों में हमने पढ़ा है, वो ही विषय वस्तु प्रकारांतर से इन 16-17 गाथाओं में है। लेकिन जो प्रवचन सार की विशेषता है कि इसको गे पदार्थों को उन्होंने कई भागों में बांटा है। वैसे अन्यत्र जो हम सब लोग पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, जीव और अजीव। वस्तु स्थिति ऐसी है कि द्रव्य तो छह हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का। इसमें अजीव नाम का कोई द्रव्य तो है नहीं, लेकिन जीव को मुख्य बनाकर उन छह द्रव्यों को दो भागों में बांटा, तो एक में रखा जीव और दूसरे में रखा अजीव। तो जीव तो अकेला एक रह गया एक ग्रुप में, और बाकी के जितने पांच हैं वो अजीव के ग्रुप में चले गए। इस तरह से जीव और अजीव दो प्रकार के द्रव्य हैं। द्रव्य संग्रह का तो मंगलाचरण यहां से शुरू किया है कि जीवम जीवम दब्बम जनवर वसहीर्ण जीर्ण निर्दिष्ठम। मेरे कहने का कि जिस जिनेन्द्र भगवान ने जीव अजीव द्रव्यों को हमें बताया, उन जिनेन्द्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं। माने जीव अजीव की मुख्यता से ही हर जगह इनका बंटवारा है, और उसके पीछे हेतु ये है कि मैं स्वयं जीव हूं और बहुत से अजीब पदार्थों को मैंने जीव मान रखा है। उन अजीब पदार्थों से अपने को भिन्न जानने के लिए इस तरह के दो भेद किए, भेद विज्ञान की मुख्यता से कि जीव और अजीब है ना, इस तरह से बांटकर उन्होंने कर दिए। अब इसमें जीव अजीब का वर्णन है तो वो जीव की परिभाषा है, चेतना लक्षण वो जीव है। फिर अजीब की परिभाषा है कि जिसमें चेतना लक्षण नहीं है वो अजीब है, क्योंकि जो अजीब पांच पदार्थ हैं, पांच द्रव्य हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, उनकी तो अलग से परिभाषाएं हैं, लेकिन हमें अजीब की ऐसी परिभाषा चाहिए जो पांचों में घटित हो सके। इसलिए वो नेगेटिव बनाई, कैसी, कि जिसमें चेतना लक्षण नहीं है। अरे नहीं है की बात क्यों करते हो, है की बात करो ना। जैसे आप कहते हो जिसमें चेतना लक्षण है वो जीव है, जो रूप रस गंध स्पर्श वाला है वो पुद्गल है, जो चलने में निमित्त है वो धर्म द्रव्य है जीव और पुद्गलों को, जो जीव और पुद्गल चलते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में निमित्त है वो अधर्म द्रव्य है, जो रहने में निमित्त है वो आकाश द्रव्य है, जो प्रणमन में निमित्त है छह द्रव्यों के वो काल द्रव्य है। तो हरेक की परिभाषा पॉजिटिव है, तो फिर अजीब की नेगेटिव क्यों, कि जिसमें चेतना नहीं है वो अजीब है। हर जगह तो है बताया था अनंत जी, फिर यहां नहीं है की बात क्यों करते हैं कि जिसमें ये नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई अजीब की बात कुछ अजीब ही है, क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव है ना, उसका नाम भी तो अजीब है, वो भी तो नेगेटिव है। कहते जीव नहीं वो अजीब, इसीलिए जो जिसमें चेतना नहीं वो अजीब, ख्याल में ना। इस तरह से उनने जीव आदि के जो छह द्रव्य हैं उन सब की परिभाषा इस विशेष अधिकार में दी, ख्याल में, और वो छड़ाला में भी है, द्रव्य संग्रह में भी है, तत्वा सूत्र में भी है कि छह ही द्रव्यों का सामान्य स्वरूप बताया है कि ज्ञान दर्शन उपयोग जिसमें है, उपयोग लक्षणम, उपयोग लक्षण जिसका है, चेतना जिसका लक्षण है, ज्ञान दर्शन चेतना जिसमें विद्यमान है, अथवा ज्ञान चेतना कर्म चेतना और कर्म फल चेतना जिसमें विद्यमान है वो जीव है, और ये चेतना जिसमें नहीं है वो अजीव है। इस तरीके से इनमें जीव अजीव का जो विभाग जैन दर्शन के और ग्रंथों में है वो इसमें भी है। इसमें विशेषता इस बात की है कि इनने ऐसे विभाग कई किए, जैसे जीव अजीव तो का लोक अलोक, निष्क्रिय सक्रिय, द्रव्य विशेष गुण विशेष, मूर्त अमूर्त, सप्रदेशी अप्रदेशी, यानी ऐसे नेगेटिव इनने कई हिस्से बनाए। उनकी बातें और अन्य ग्रंथों में नहीं है सो बात नहीं है, वहां भी मूर्ति सो पुद्गल और जो अमूर्ति जो बाकी के पांच द्रव्य को अमूर्ति कहते हैं ना, उनकी चर्चा अन्यत्र भी है। लेकिन जैसे व्यवस्थित ढंग से इन्होंने इन सारे मुद्दों को उठाया है, तो पहले जीव जीव की बात कर ली, फिर बताया उसको लोक अलोक में बांटा, माने सारी दुनिया को पहले जीव जीव में बांटा, दो भागों में बांटा, माने बांटा दो ही भागों में है। फिर जीव जीव को उन्होंने पहचान बता दी, हरेक द्रव्य की पहचान बता दी, और फिर बाद में उसे लोक अलोक में बांटा कि छह द्रव्य जहां विद्यमान है वो लोक, और जहां अलोक आकाश है, अब वहां तो आकाश के भेद है। अब हम तो वहां ऐसा कहते हैं आकाश दो प्रकार का है, लेकिन इन्होंने यहां ये अपनाया है कि सारे जो क्षेत्र समुदायक मत विश्व है, इनने विश्व को दो भागों में बांटा, पहले जीव जीव और फिर उसी विश्व को लोक अलोक, ऐसे दो भागों में बांटा। क्या और क्या किस रूप में प्रस्तुत किया कि जहां छह ही द्रव्य हैं, छह द्रव्यों का समुदाय है उसका नाम लोक, और जहां अकेला आकाश है उसका नाम अलोक। अब ऐसी परिभाषा बोलते हैं जिस आकाश के जिस हिस्से में छह ही द्रव्य रहते हैं बाकी के पांच द्रव्य भी रहते हैं उसे बोलते हैं लोक, और कहते आकाश के दो भेद हैं लोकाकाश और अलोकाकाश। वो कहते कि नहीं आकाश के नहीं, विश्व के दो भेद हैं क्या लोक और अलोक। लोक कहते विलोक कहते षड द्रव्य यानी अत्र जहां छह द्रव्य दिखाई देते हैं, छह द्रव्य हैं उनका नाम है लोक। षड द्रव्यमयी छह द्रव्यमय है वो लोक, और उससे जो इतर है वो अलोक, क्यों आ है ना, ये जीव से इतर है वो अजीव, तो लोक से इतर है वो अलोक। क्योंकि लोक और अलोक नाम पड़े हैं, ये भी तो एक लोक पॉजिटिव और अलोक उसके नेगेटिव है, जो लोक नहीं वो अलोक। इसका मतलब छह द्रव्यों के समुदाय को लोक बोलते हैं। छठला में आता षड द्रव्यमयी, लोक के बारे में आता छह द्रव्यमय है उसे लोक कहते हैं, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। आपने जैन सिद्धांत प्रवेश का में पढ़ा है, ऐसा नहीं कि जिसमें छह द्रव्य रहे वो लोक, वो लोक नहीं है, वो तो लोकाकाश है। क्या क्या ना, जिसमें छह द्रव्य पाए जाए, जो आधार आधे संबंध बताया जाए तो वो तो है लोकाकाश, और जो छह द्रव्यों का समूह उसका नाम है लोक, और जहां छह द्रव्यों का समूह नहीं है उसका नाम है अलोक। माने अलोक माने अलोकाकाश माने लोक से भिन्न, ऐसा जैसे जीव से भिन्न वो अजीव, ऐसे ही लोक से भिन्न वो अलोक। फिर लोक अलोक के रूप में बांटा, फिर उन्होंने कहा कि ये सक्रिय निष्क्रिय है ना, कि ये दो द्रव्य जो हैं वो सक्रिय हैं। देखो परिणमन रूप क्रिया तो छह द्रव्यों में होती है, लेकिन क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन रूप क्रिया माने काल से कालांतर रूप क्रिया तो छह द्रव्यों में होती है, समझे ना। जैसे अपन उग्रता सामान्य बोलते हैं, लेकिन ये त्रियक प्रचय क्षेत्र जिसे बोलते हैं, जैसे प्रदेश जिसे हम बोलते हैं, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की क्रिया वो सिर्फ दो द्रव्यों में होती है, जीव और पुद्गलों में, क्योंकि आकाश अपनी जगह अवस्थित है आकाश का जो प्रदेश अनादि से जहां है वो अनंत काल तक वहीं रहेगा, एक इंच भी यहां वहां होने वाला नहीं है। धर्म द्रव्य में भी ऐसा ही है कि लोकाकाश प्रमाण व्याप्त है ना, तो धर्म द्रव्य का जो प्रदेश जहां है वो अनादि काल से है और अनंत काल तक वहीं रहेगा, उसलिए क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया उसमें नहीं होगी। अधर्म द्रव्य की भी यही पोजीशन है। और काल द्रव्य असंख्यात काल द्रव्य हैं और लोकाकाश के एक एक प्रदेश में रत्नों की राशि के समान जमे हुए हैं। रत्नों की राशि क्यों बोलते हैं, तो पुद्गल के जो परमाणु है ना उसमें स्निग्ध रूक्षत्व नाम के गुण होते हैं, इसकी वजह से वे दो आदि पास पास रहे तो आपस में चेंट जाते हैं और चेंटे चेंटे हों बिखर जाते हैं। क्या स्निग्धता होगी तो चेंट जाएंगे, रूक्षता होगी तो बिखर जाएंगे। काल द्रव्य भी दो आपस में ऐसे परमाणु जैसे पास पास रहते हैं लेकिन वे कभी आपस में चेंटेंगे नहीं एक दूसरे से, ख्याल में आया ना। इसलिए जो वो काल द्रव्य है उसमें स्कंद रूप होने की ताकत नहीं है, ये परमाणु में स्कंद रूप होने की ताकत है ना, उसकी मर्यादा एक प्रदेश मात्र की है और वो है। लेकिन जो काल जैसे कि आकाश द्रव्य है वो तो पूरी दुनिया में छाया है तो वो जाएगा तो कहां जाएगा, ऐसे धर्म द्रव्य अलोकाकाश में तो जा नहीं सकता है और पूरे लोकाकाश में तो एकदम पूरी तरह से फैला हुआ खचित है तो हिलेगा तो कहां को हिलेगा, समझे ना। जैसे कि एक ने अपने एक बर्तन में कोई चीज ठसाठस भर दी तो उसे हिलने की गुंजाइश ही नहीं है। आप ले लो के डिब्बे में बैठे हैं तो हिलते हैं डुलते हैं लेटरिन बाथरूम जाते हैं, लेकिन वो ऐसे भर दिया जैसे कि अपन कोई चीज को ठसाठस कि वहां हिलने की गुंजाइश ही नहीं है, तो धर्म द्रव्य को कहां हिलने की गुंजाइश है, धर्म द्रव्य को कहां है। लेकिन काल द्रव्य तो इतना छोटा है कि एक प्रदेश में है और आकाश के प्रदेश तो अनंत है, और मान लो लोकाकाश के बाहर नहीं जाता है तो लोकाकाश में तो आराम से घूमे फिरे, तो वो भी कहते हैं कि आकाश के एक एक प्रदेश में रत्नों की राशि के समान खचित है। तो रत्नों की राशि के कहने का, रत्नों की राशि जैसे कि अपन हार में जड़ देते हैं तो एक दूसरे के पास जड़ी हुई तो है लेकिन एक दूसरे से वो चिपक नहीं गई, क्या एक दूसरे की जगह जाती नहीं है, अपना स्थान छोड़ के दूसरे के स्थान में जाता नहीं है और दूसरों के स्थान का अपने में आता नहीं है। रत्नों की राशि का उदाहरण देकर के वो ये कहना चाहते हैं कि उनमें स्कंद होने की शक्ति नहीं है। ये बात इसमें कही है, प्रवचन सार में है, दूसरी जगह ये बात नहीं मिलेगी। लेकिन वो भी क्योंकि क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं जाते, जो काल द्रव्य जिसे हम कालाणु बोलते हैं, अणु बोलने में ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत बड़ा महान है उसका एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन वो तो परिपूर्ण द्रव्य है इसलिए वो अंश नहीं है किसी का। तो काल द्रव्य जहां अनादि काल से जिस आकाश के प्रदेश में जो काल द्रव्य स्थित है वो अनादि से वहीं है और अनंत काल तक वहीं रहेगा, वहां से हिलने वाला नहीं है। तो इस चार द्रव्यों की ये पोजीशन है, आकाश धर्म अधर्म और काल, और इस दृष्टि से उनको निष्क्रिय कहते हैं। उनमें परिणमन नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, यहां परिणमन का नाम क्रिया नहीं है। देखो सारे जगह लोक में जहां वर्णन होता है सारी जगह क्रिया परिणमन का नाम होता है, जो परिवर्तन होता है ना, जो बदलते हैं ना उसको क्रिया बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कह रहा है लंचन हो रहा है ये हो रहा, मतलब उस क्रिया काय को परिवर्तन को क्रिया बोलते हैं। लेकिन यहां स्पेशल शब्द में क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गमन का नाम क्रिया है। एक आकाश के प्रदेश से दूसरे आकाश के प्रदेश में जाना उसका नाम क्रिया है। तो कहते हैं कि उन्होंने द्रव्यों को सक्रिय और निष्क्रिय इन दो भागों में बांटा, और जीव और पुद्गल दो सक्रिय द्रव्य हैं और बाकी के निष्क्रिय हैं। इसको प्रवचन सार में इस रूप में कहते हैं क्रियावान और भाववान। तो भाववान तो छह द्रव्य हैं, भाववान वही परिणमन, परिणमन रूप क्रिया, और क्रियावान माने क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्रिया रूप सिर्फ दो द्रव्य हैं। तो ऐसे इन्होंने भाववान और क्रियावान ऐसा वर्गीकरण भी किया। तो क्या जीव अजीव, लोक अलोक, भाववान और क्रियावान, ऐसे विभिन्न प्रकार के भेदों में बांटकर इन्होंने यहां द्रव्य विशेष की चर्चा की। ये प्रथम सार की विशेषता है, ऐसे रूपों में बांटकर। ये सब चर्चाएं दूसरी जगह भी हैं, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थित रूप में इसमें है क्रम से, ऐसी दूसरी जगह नहीं है। अब वो जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया की बात है, उससे ही प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त की चर्चा उसी के आधार पर होती है। जैसे प्रेरक निमित्त कौन, तो अपन फटाफट कह देते हैं गुरुजी प्रेरक निमित्त हैं, दंडा मार के पढ़ाए। तो पुस्तक जो है वो उदासीन निमित्त है, क्योंकि वो तुम पढ़ो तो तुम्हें सहायता दे देती है, लेकिन तुमको बाध्य नहीं करती है कि तुम नहीं पढ़ो तो, जैसे गुरु जी बाध्य करते हैं। लेकिन ऐसी व्याख्या तो नहीं की शास्त्रों में। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा जो क्रियावान द्रव्य हैं उनको प्रेरक निमित्त बोलते हैं, और जो निष्क्रिय द्रव्य हैं उनको उदासीन निमित्त बोलते हैं। ऐसी बर्बाद है। जैसे अपन ने उसमें उदाहरण दिया ना, हवा जो है वो ध्वजा को चलने में, क्यों हवा चलती है तो प्रेरक निमित्त है। तो ये तो कहते क्रियावान, जैसे बोलते हैं ना कि धर्म द्रव्य है वो उदासीन निमित्त है, क्योंकि वो क्रियावान नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। अब वो निमित्त कायम है गति में, तो गति वाले द्रव्य को निमित्त तो वो खुद भी दौड़ना चाहिए ना। जैसे कि बैल हैं वो गाड़ी को ले जाते हैं, तो गाड़ी को कहीं से कहीं दूसरी जगह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं ना, तो साथ में खुद भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन धर्म द्रव्य है वो खुद नहीं जाता है, वो वहीं का वहीं है, वो दूसरे को गति करने में निमित्त है देखो, और खुद गति नहीं करता है। तो जिसमें खुद गति नहीं हो उनको वो उदासीन निमित्त कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रेरक निमित्त हैं वे कुछ ज्यादा बलवान हैं, क्योंकि डंडा मार मार के पढ़ाते हैं गुरुजी, हवा खूब चल चल करके उसे हिला देती है। इसलिए इसी वजह से इस भाषा से और लोगों के चित्त में जो ऐसा भ्रम खड़ा होने लग गया कि प्रेरक निमित्त जो है वो ज्यादा बलवान है और वो काम कराते हैं, उदासीन तो ठीक है ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उन्होंने लिखना पड़ा कि सभी निमित्त कार्य होने में तो धर्मास्ति काय के समान ही उदासीन है। तो फिर आपने ऐसा प्रेरक और उदासीन ऐसे भेद क्यों किए? तो उन्होंने कहा कि ये बताने के लिए कि वो निमित्त में क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गति होती है ऐसा निमित्त है, इसमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गति नहीं होती है ऐसा निमित्त है। उन्होंने कहा इच्छावान और क्रियावान इन निमित्तों को प्रेरक निमित्त कहते हैं। तो जीव द्रव्य इच्छा भी है और क्रिया भी है, और पुद्गल में अकेली क्रिया है, इच्छा नहीं है, है? और जिनमें इच्छा नहीं है और गति नहीं है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश और काल में न इच्छा नहीं है गति भी नहीं है, तो चार द्रव्य उदासीन निमित्त हैं और जीव और पुद्गल प्रेरक निमित्त हैं, ऐसा वर्गीकरण कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जो उदाहरण खोजते हैं अन्ना जी, वो जीव और पुद्गलों में ही दोनों भेद करते हैं। मैंने अपन ऐसा करते हैं कि 100 पाड़ों में से पाड़ी छांटते हैं, नहीं सर पाड़ा समझ रहे, 100 पाड़े खड़े कर दो, कोई अगर इसमें से एक बहुत बढ़िया पाड़ा छांट दो तो समझ में आता है कि एक पाड़ी छांट के लाओ इनमें से। बैलों में से गाय छांटते हैं ऐसा समझ लीजिए आप। जो जीव और पुद्गल जो क्रियावान द्रव्य हैं, वे दोनों ही क्रियावान होने से प्रेरक है ना। अब उनमें से ही हमने हवा को प्रेरक निमित्त कह दिया, जीव और पुद्गल दोनों की मिली हुई है ना हवा, उसको प्रेरक कह दिया, और एक को मान लो कि खंभे को उदासीन कह दिया, जिस डंडे में वो लगी है उस तो डंडे को उदासीन कह दिया, डंडा भी पुद्गल है। ये तो सिर्फ ये बताने के लिए किया था, और हमने उसमें से निमित्त की बलवत्ता खोजनी शुरू की। तो इस तरह से क्रियावान और भावमान इस तरह के भेद भी किए हैं, फिर मूर्तिक और अमूर्तिक ऐसे भेद किए। तो देखो मूर्ति कहते ही पुद्गल की प्रमुखता हो गई, क्योंकि पुद्गल मूर्ति गई वो स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, अथवा रूपिणा पुद्गला, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं, जो रूपी हो उसे वो मूर्त कहलाता है। अब मूर्त की परिभाषा इसमें बहुत अच्छी दी है, देखो ये जो अपन ने इतना पढ़ा है, ये सब जो गाथाएं हैं इन्हीं का भाव अपन ने बता दिया है अभी, इसलिए अपन देखो पेज नंबर 269 और 131वीं गाथा। ये जो गाथाएं छोड़ी हैं उनका सबका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। मुत्ता इंद्रिय गेज्जा पोगल दबप्पगा अनेक विधा, कभी कहते मूर्त अमूर्त में हमने द्रव्यों का विभाग किया, तो मूर्त का अर्थ क्या है? तो उन्होंने अपनी पहचान के लिए कहा इंद्रिय गेज्जा, जो इंद्रियों से पकड़ में आए उसको मूर्त कहते हैं। देखो जान पकड़ता उसे जानता तो आत्मा ही है, इंद्रियां नहीं जानती, इंद्रियां तो जड़ हैं, लेकिन जिनके जानने में क्षयोपशम ज्ञान वालों को इंद्रियां निमित्त होती हैं, तो इंद्रिय गेज्जा वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ऐसा क्यों बोला क्षयोपशम ज्ञान के निमित्त वालों, केवल ज्ञान भी तो उनको बिना इंद्रियों के सीधे ही ग्रहण करते हैं, ऐसी कोई अनिवार्य थोड़ी है कि हम रूप को अकेली आंख ही से देख सकते हैं और आंख नहीं हो तो नहीं देख सकते। केवली भगवान बिना आंख के रूप को देखते कि नहीं देखते? तो लेकिन जिन संसारी जीवों को मूर्ति को और अमूर्ति का भेद बताना है, वे संसारी जीव रूप को आंख के माध्यम से ही जानते हैं, तो उनको पहचानने में सुविधा जल्दी बन जाए, इसलिए उसको उन्होंने कह दिया क्या कि मुत्तम इंद्रिय गेज्जा है ना, मुत्ता इंद्रिय गेज्जा, मूर्त किन्हें कहते हैं? जो इंद्रियों से पकड़ में आए। वास्तव में कहना तो चाहिए कि जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाए जाए, क्योंकि पॉजिटिव तो वो है ना, रूप रस गंध स्पर्श है जो उनमें। अब इनने तो अपन ने अपनी तरफ से बात कही, क्यों उसको रूप को रूपी की तरफ से बताना चाहिए ना, रूप का लक्षण रूपी पदार्थ में मिलेगा ना, तो लक्षण ऐसा होना चाहिए ना जो रूपी पदार्थ में मिले, वो तो हम में मिल रहा है। इंद्रियों से तो ग्रहण जीव करता है ना उन्हें, वो लक्ष्य क्या है? मूर्त पदार्थ, तो लक्षण मूर्त में रहना चाहिए ना, मतलब लक्षण लक्ष्य में रहना चाहिए ना, तो लक्ष्य तो वहां है और लक्षण यहां, कि तुम्हारी पहचान के लिए सुविधा तुम्हें हो जाए, कि तुम्हें जो इंद्रियों के माध्यम से जितनी जानकारी हो रही है वो सब मूर्त पदार्थों की हो रही है, और मूर्त पदार्थ अकेला एक पुद्गल है, तो पुद्गल ही तुम्हारे जानने में आ रहा है। कि ये बात इसलिए जानना जरूरी है कि हमने इंद्रियों के प्रति बहुत उपकृत भाव हो गया है, हम कृतज्ञ हो गए हैं और उनकी कृतज्ञता में हम बहुत दब गए हैं। तो नहीं कृत मारम साधु विश्रंती, किए हुए उपकार को सज्जन लोग भूलते नहीं हैं, कोई ने हमें जरा सा भी उपकार कभी किया हो तो जिंदगी भर याद रखते हैं ना, हम कृतज्ञ थोड़ी हैं, ये हमारे अंदर में भावना है। और हमने कोई ये दिमाग में जम गया है कि ये इंद्रियां हमें ज्ञान में बहुत बड़ी इन्होंने उपकार हम पर किया है, तो निमित्त उपकार सब आता भी है ना, ये इनने उपकार किया हमसे, तो कहते हैं कि ये पुद्गल को जानने में मूर्त पदार्थ को जानने में इनने हमें बहुत उपकार किया है। आंख नहीं होती तो रूप दिखाई नहीं देता। देखो मैं आपको एक कहता हूं कि ये आप कल्पना करो इस बात के लिए कि जिसकी आंख नहीं है और हमारे आंख है, तो हम अपने को कितना भाग्यवान समझते हैं और उनको कितना अभागा समझते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि आंखें गई तो समझ लो जीवन गया, बस मर गए, मौत जैसा लगता कि नहीं लगता है? क्या क्या रहा, तो जिंदगी में कोई रस ही नहीं रह गया। तो ये इंद्रियों ने हमको ज्ञान में बहुत बड़ा सहयोग किया, ऐसा इंद्रियों का उपकार हमारे माथे पर बहुत है और उससे हम कृतज्ञ हो गए, और कृतज्ञ होकर के अपने मन में ऐसा समझते हैं कि इनने बहुत उपकार हमारा हमसे किया, क्योंकि इन हमें ज्ञान में निमित्त हैं, ज्ञान को जानने में हमें बहुत साफ पढ़ने में कितने आंखों ने सहारा दिया है, कानों ने प्रवचन सुनने में हमें कितना सहारा दिया है, तो इस तरह से इनके प्रति हम बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने यहां बताया कि भाई इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि अपने तो बाल बोध पाठमाला भाग 3 में लिखा है कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है, क्योंकि वो आत्मा के जानने में निमित्त भी नहीं है। वो एक तो उपादान तो है ही नहीं, जो असली कारण तो वो है ही नहीं, पुद्गल के जानने में भी निमित्त ही है, वहां भी उपादान तो नहीं है, लेकिन वो पुद्गल के जानने में है, आत्मा के जानने में नहीं है ना। और हम अनंत काल से इस संसार में आत्मा को नहीं जानने की वजह से रख रहे हैं, मुख्य रूप से। गौण रूप से तो जो वस्तु का स्वरूप है वो पूरा नहीं जानते हम, जीव अजीव सबका इसलिए रख रहे हैं। समय सार में ये गाथा है कि जो जीव को नहीं जानता है वो अजीब को भी नहीं जानता, ऐसा है क्या? नहीं। और जो जीव और अजीब को नहीं जानता है वो संबंध इसी कैसे हो सकता है, देखा क्या? जीवम जीवम अजानंतो कहम होंती सदमदिथि, ये शब्द है क्या? नहीं। तो ऐसा नहीं लगा जो जीव को नहीं जानता है वो संबंध इसी कैसे हो सकता है, ऐसा क्या लिखा? देखा ना, जो जीव को नहीं जानता है वो अजीब को भी नहीं जानता है, और जो जीव और अजीब दोनों को नहीं जानते हैं वो संबंध इसी कैसे हो सकता है? तो अजीब को जानना क्या नहीं जानना? तो कहते इसमें अनेकांत है कि ये जीव नहीं है इतना जानना, ऐसा जानना, और उसकी डिटेल जानो तो ठीक और ना जानो तो ठीक। अब इसको जानना कहें कि नहीं जानना कहें, बोलो न्याय देंगे। तो ये मैं नहीं हूं इतना जाना ना, ये जाना क्या नहीं जाना, ये तुम्हें दिखा क्या नहीं दिखा, नहीं तो कैसे कह रहे कि ये मैं नहीं हूं, इतना जानना जरूरी है। इसलिए लिखा हूं ना कि जीव अजीव को जाने बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। और जब हम ये कहते हैं कि भैया जब तक जीव को जाना नहीं, आत्मा को तूने नहीं जाना, इसलिए तू अनंत दुखी है, उसमें भी वो इंक्लूडिंग है, क्योंकि आत्मा को अस्थि से जानना वो आत्मा को जानना है, और आत्मा को ही नास्ति से जानना उसका नाम अजीब को जानना है। तो आत्मा को नास्ति से जाना तो अजीब जानने में आ गया कि ये आत्मा है, ये जीव को जानना है, और ये आत्मा नहीं है, ये अजीब को जानना है। चाहे ऐसा कह दो चाहे ये कह दो कि वो हमारा आत्मा ही की जानना है। देखो तो एक आदमी ने डॉक्टरी पढ़ी, तो डॉक्टरी वाले को दवाइयां जानना जरूरी है, बीमारियां जानना जरूरी है, ठीक है कि नहीं? तो और चीज तो जानना जरूरी नहीं है, कानून जानना तो जरूरी नहीं है ना। तो कानून नहीं जाने तो भी बढ़िया डॉक्टर हो सकता है क्या? नहीं। तो जैसा कानून जानना जरूरी नहीं है, भाषा जानना भी जरूरी नहीं है, क्यों? कि नहीं, ये बात नहीं, भाषा जानना जरूरी है, क्योंकि वो दवाई का नाम तो किसी भाषा में होगा, कानून के जानने में और भाषा के नहीं जानने में फर्क है। भाषा का डिटेल भले ही नहीं जाने, लेकिन वो दवाइयां किसी ना किसी भाषा में लिखी होंगी, होगी कि नहीं होगी? मरीज से किसी ना किसी भाषा में बात करनी पड़ेगी, है ना? ये मैं लंदन में था, ये भगवान जी भाई कतरा भाई है ना, आते ना उनका, तो उनका एक पोता था, पोते की शादी एक आंख की डॉक्टर लड़की से हुई, जो आंख की डॉक्टर, और वो दूसरे देश में यूरोपियन देश है, वहां जाकर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, तो वो वहां आंख की प्रैक्टिस नहीं कर सकती डॉक्टर होने पर भी, क्यों? कि वहां लोकल भाषा नहीं जानती थी वो, तो वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुमको नौकरी तब देंगे जब लोकल भाषा सीखो, उसका सर्टिफिकेट हो। तो मैं आंख की डॉक्टर हूं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूं, तुम्हारी लोकल भाषा से क्या मतलब? यानी गुजराती नहीं जानता तो मुझे आंख का डॉक्टर होने पर नौकरी नहीं मिले, ये भी बात हुई, क्यों ऐसा हुआ ना? तो उनने कहा कि जो मरीज आते हैं वे गुजराती के अलावा कुछ जानते नहीं ना, दिक्कत तो है, जहां हम तुम्हारे गांव में नियुक्ति करी वो सब महिलाएं और पुरुष आते हैं, वो उसी भाषा में बात करते हैं, दूसरी भाषा वो जानते नहीं है, तो उन मरीजों से कॉन्टेक्ट तुम कैसे करो? अंग्रेजी जानना मान लो इसलिए जरूरी है कि दवाइयों की किताबें दवाइयों के नाम अंग्रेजी में है, और वह लोकल भाषा जानना इसलिए जरूरी है कि मरीज तो लोकल भाषा से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अब मोटे तौर से तो यही कहेंगे कि डॉक्टर को तो बीमारियों का ज्ञान होना चाहिए और दवाइयों का ज्ञान होना चाहिए, और चीजों का ज्ञान हो तो ठीक और ना हो तो ठीक, लेकिन और चीजों के ज्ञान में कानून का ज्ञान हो तो ठीक और ना हो तो ठीक, बिल्कुल भी नहीं हो तो चलेगा, समझ गए ना आपके में ना? लेकिन वो भाषा का ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे जीव को एक कॉमन कथन है, कौन सा, आत्मा को कल्याण करना है तो आत्मा को जानो, इतना ही पर्याप्त है कि नहीं। आत्मा को पुद्गल को जानना की जरूरत तो नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है। देह से भिन्न भगवान आत्मा है जानना जरूरी है कि नहीं। राख से भिन्न भगवान आत्मा जानना है जरूरी है कि नहीं। तो राख को जानना तो आसा तत्व को जानना, देह को जानना तो अजीब तत्व को जानना, बोलो ठीक है कि नहीं। अच्छा मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं, भाषा को जानना जरूरी है कि नहीं आत्म के कल्याण के लिए। यार तो उलझा रहे फिर हमको पंडित बनाने के चक्कर में, ऐसा नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि देशना लब्धि के बिना सम्मदर्शन होगा, नहीं अनिवार्य है ना शास्त्र में पांच लब्धियों में देशना लब्धि अनिवार्य है कि नहीं। तो देशना लब्धि किसी भाषा में होगी कि नहीं होगी, बोला गुरु जी हमें समझाएंगे तो किसी न किसी हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में, किसी में भी समझाएं, लेकिन आत्मा को जो गुरु समझाएंगे चाहे हम पढ़ के शास्त्र में पढ़ेंगे तो वो लिखा तो किसी भाषा में होगा, बोलेगा तो कोई भाषा में, चाहे वो साक्षरी हो चाहे वो नरकक्षरी हो, चाहे वो शेर को समझाया वो मुनिराजों ने तो भी शास्त्र में लिखा के उसे मुनिराजों ने कहा कि हे मृगराज तू तो ऐसा है महावीर होने वाला, जो कुछ भी उपदेश दिया वो किसी ने किसी भाषा में दिया ना, किसी को अचानक इशारों में हो जाए वो भी समझाया तो वो एक भाषा ही है, वास्तव में इशारे की भाषा है ना, गूंगों की, गूंगों बहरों की भाषा होती क्या नहीं, वो ऐसे 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 करते ना गूंगे बहरे लोग, उनकी भी भाषा होती है क्या नहीं। तो मेरे कहने का मतलब कि आत्मा के कल्याण के लिए अकेले आत्मा का ज्ञान जरूरी है कि भाषा का भी जरूरी है, बोला तो हम तो लिखा अकेला आत्मा जानो और कुछ नहीं जानो, वो सही लिखा, वो मुख्य रूप से बात है, जब गौण से बारीकी में जाएंगे तो वो सब धीरे धीरे ये सब बातें भी आ जाएंगी। क्यों तो साहब हमारी बारात आएगी तो आपके और स्वागत बढ़िया होना चाहिए, कम से कम पांच प्रकार की मिठाइयां बनना चाहिए भोजन में, पांच प्रकार की मिठाइयां बनना चाहिए कि साहब और भी जो कुछ बता दो, जो जो आप कहो वो बनना चाहिए वो सब हम बनाएंगे, हमें कोई कमी नहीं है, बस आप हमको मार्गदर्शन चाहिए कि नहीं नहीं बस पांच मिठाइयां बना देना तो और कोई बात नहीं, पांच मिठाइयां पांच से कम नहीं होना। क्यों क्या ठीक है, हमारे यहाँ पे पचबंदी सतबंदी ऐसे चलता था तो पांच मिठाइयां बना दी, पानी नहीं रखा क्योंकि आपने मिठाइयां कहा था पानी तो है नहीं, क्यों पूरी नहीं रखी और सब्जी नहीं रखी, क्यों साहब क्या होगा कि आपने हमें छह दफे पूछा था कि और जो जो रखना हो सब बता दो, पान नहीं रखा, सुपारी नहीं रखी, इलायची नहीं रखी, लौंग नहीं रखी, क्यों, क्योंकि आपने कहा था, जो हमने आपसे सब पूछा था आपने बार बार कह दिया था, ऐसे आपने बार बार कह दिया था उस आत्मा को जानो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आत्मा को जानो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और अब तुमने हमारे लिए तत्वासूत्र रख दिया, समय साथ रख दिया, वजन सुनना अनिवार्य कर दिया, लेकिन दैन को भी रख दिया, परिचामक रख दिया, ये चक्कर नहीं चलेगा। क्यों क्या है कि अभी भी ये कहेंगे कि आत्मा का कल्याण करने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है, और कुछ नहीं जानो, जानो तो ठीक और ना जानो तो ठीक, लेकिन जब समझाने बैठेंगे ख्याल में है ना है, तो एकदम धड़ाधड़ संस्कृत में बोलने लग गए तो वो मेढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, क्यों कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। तो फिर या बे गुरु जी मिलेश भाषा को जानने वाले या कोई दूसरे, उनको समझाना पड़ेगा कि नहीं समझाना पड़ेगा उसकी भाषा में। तो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने उसको मूर्त और अमूर्त के भेद में डाला, तो इन छह द्रव्यों का बंटवारा कैसे किया, जीव और अजीव में किया, लोक और अलोक में किया, क्रियावान और भाववान में किया, और काय में किया, मूर्त और अमूर्त में किया। ऐसे जो लोक के जो छह द्रव्य हैं उन सारे द्रव्यों को उन्होंने मूर्त और अमूर्त में भी बांटा, और उन्होंने कहा मूर्त क्या है, क्यों तो इंद्रिय गेज्जा जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाएं वो मूर्त हैं, ख्याल में है ना, मूर्त कौन है कि जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाएं वो मूर्त हैं, उन्होंने ये परिभाषा बनाई। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं करा वो तो अतिव्याप्ति दोष हो गया, क्योंकि सिद्ध भगवान जो हैं वो उनको बिना इंद्रियों के ग्रहण करते हैं। अरे भाई वो अतिव्याप्ति अव्याप्ति को हमें न्याय शास्त्र में रखो, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारी समझ में आ जाए। कि जो तुम्हें इन चक्षु आदि इंद्रियों से दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है, वो आत्मा नहीं, वो तू नहीं, वो मैं नहीं। तो क्या मुत्ता इंद्रिय के जब पुगल दब्बा प्रकाव की विधा, जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य मूर्त पदार्थ है वो पुद्गल द्रव्य है और वो अनेक विधा, वो अनेक प्रकार का है। देखो अब अनेक प्रकार का है और इसमें फिर आगे बड़ी बड़ी बहस की है, ये लंबी लंबी टीका है ना संस्कृत में, इसमें मालूम क्या बहस की है कि तुम कहते हो इंद्रिय के जहा है, तो एक तो मैंने बोला शुद्ध भगवान बिना इंद्रिय के ग्रहण करते हैं, और वो कहते परमाणु है वो इंद्रियों के द्वारा, पकड़ में नहीं आना, फिर वो पुद्गल नहीं होगा, जो स्कंद है वो पुद्गल में होगा, वो पकड़ में आता है, परमाणु नहीं आता, परमाणु बहुत सूक्ष्म है तो अपनी चक्षु इंद्रिय से पकड़ में नहीं आता। ये सब बहस की है, तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो सूक्ष्मता से हमारे नहीं आता होगा पकड़ में, लेकिन वही परमाणु जब अनेक परमाणु मिलकर स्कंद बन जाते हैं तो वो हमारे पकड़ में आते हैं, इसका मतलब उस परमाणु में भी वो चीज विद्यमान है जो इंद्रिय के द्वारा पकड़ी जा सकती है, वो तो हमारी इंद्रिय विशेष का डिफेक्ट है, क्या उतनी उतनी छोटी चीज को नहीं देख सकता, आंखें सुई का छेद आंख से देखने में आता है, अब कोई क्या मुझे तो नहीं दिखता है, तो तेरे हिसाब से ऐसा माना जाएगा कि सुई का छेद आंख से देखने में नहीं आता है, तू चश्मा लगवा ले और क्या करे। तो वो कहते हैं ऐसी सब बहस की है कि भले ही वो बहुत से पुद्गल हवा का पुद्गल है, वो चक्षु इंद्रिय से देखने में नहीं आता, रूप तो उसमें है ना, हवा में रूप है लेकिन चक्षु इंद्रिय से देखने में नहीं आता, तो इसलिए आप एक कैसे कहते हो कि सारा पुद्गल है वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, तो सारी बहस करके उन्होंने ये बात सिद्ध की है कि नहीं नहीं उसमें वो बात है कि इंद्रियों के द्वारा वो ग्रहण करने में आता है, वो सब पुद्गल है। इस तरह से इसमें इसकी चर्चा करने के बाद में और भी कई तरीके से शब्द है, तो उन्होंने कहा शब्द है तो वो गुण है कि पर्याय है, क्योंकि रूप भी गुण है ना, जो चक्षु इंद्रिय से स्पर्श गुण है, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा पकड़ा जाता है, रस गुण है, रसना इंद्रिय के द्वारा जो पकड़ में आता है, घ्राण मन गंध भी गुण है और रूप भी गुण है, लेकिन शब्द को अपने यहां पुद्गल द्रव्य की पर्याय कहेंगे, और दूसरे धर्म वाले उसे आकाश का गुण कहते हैं, वैसे से पुद्गल जो शब्दों को आकाश का गुण कहते हैं, आज के वैज्ञानिक भी बहुत ऐसी बातें करते हैं कि वो आकाश में ऐसे ऐसी ऐसी ताकत है आकाश में, जो कुछ भी होगा, तो यहाँ ये सिद्ध किया है कि नहीं, तो उन्होंने कहा पुद्गल के उसे गुण क्यों नहीं कहते, जब ये सब गुण है तो उसे गुण क्यों नहीं कहा, तो उनका गुण तो त्रिकाली होते हैं, कादाचित के नहीं होते हैं, कभी हो और कभी नहीं हो, और ये जो शब्द हैं ये कादाचित के हैं, कभी होते हो कभी नहीं होते, जो अपन ने बोला तो अभी आवाज है और थोड़ी देर बाद में ठंडी हो जाएगी, पर्याय का लक्षण है कादाचित के, माने कभी होना और कभी नहीं होना ये पर्याय का लक्षण है, और सदा होना ये गुण का लक्षण है, तो इसमें गुण का लक्षण नहीं पाया जाता इसलिए तो ये पर्याय। फिर वो कहते हैं कि इसमें तो हमको कोई रूप रस गंध स्पर्श देखने में आता नहीं है, तो यदि हम कहें कि रूप रस गंध स्पर्श जी इसमें है तो हम इसे पकड़ लें, तो वो कहते हैं कि ये कर्ण इंद्रिय के द्वारा गोचर है, कर्ण इंद्रिय से पकड़ने में आता है, इसलिए इंद्रिय गेज्जा ये परिभाषा इसमें सही हो जाती है। क्या इंद्रिय गेज्जा कि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आता है, इसलिए ये पुद्गल है, इसलिए ये मूर्ति है, तो मूर्ति की परिभाषा है कि इंद्रिय गेज्जा जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आए। ये जो मैं आपको सामान्य बातें बता रहा हूं ये बहुत सी बातें आप लोग सब जानते हैं, लेकिन ये तो अंबे भी जानते थे, कौन कुंदकुंदाचार्य जी, क्योंकि वो तो बार बार मुनियों को संबोधित करते हैं, तो उनके मुनि जो शिष्य हैं वो सामान्य से क्षेत्रों का स्वरूप नहीं जानते होंगे ना, जानते होंगे, फिर भी वो कहते हैं कि मुझको यदि व्यवस्थित ढंग से किसी वस्तु का प्रतिपादन करना है तो उसमें जो सरल बातें हैं वे भी कहनी पड़ेंगी और कठिन है वे भी कहनी पड़ेंगी, तब तो उसका वो सर्वांग विवेचन होगा, मैं सरल सरल कह दूं और कठिन छोड़ दूं तो भी अधूरा रह जाएगा, जो कठिन कठिन कह दूं और सरल छोड़ दूं तो भी अधूरा रह जाएगा, मैं द्रव्य सामान का वर्णन करूं तो उत्पाद व ध्रुव बताऊं, मैं अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व बताऊं और उसकी बारीकियों में जाऊं और क्या उसकी अपेक्षा ये द्रव्य छह होते हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये तो हमने पालभूत पाठमाला भाग ये दो में ही पढ़ लिए थे क्यों, और अब प्रवचन सार पढ़ रहे हैं और शास्त्री होने के बाद, और अब हमने तुम्हें वही बालभूत भाग दो पढ़ा रहे क्यों, ऐसा लग सकता है क्या नहीं। पर यही बात देखो, एक गे तत्व प्रज्ञापन में ये बालभूत पाठमाल वाला दो का विषय भी है और कठिन से कठिन विषय भी है, क्योंकि दोनों विषय जानना अनिवार्य है ना। इसलिए जब वर्णन करने हम बैठे हैं तो भले ही संक्षेप में करेंगे लेकिन वर्णन तो करेंगे, दोनों प्रकार का वर्णन तो किया ही जाएगा ना। इस तरह से क्या हम आपको बहुत से बहुत तत्व की आत्मा की गहरी बात बताना चाहते हैं तो भी हमको यहां से ही तो शुरू करना पड़ेगा कि देह देवल में विराजमान है पर देह से भिन्न है, तो देह से भिन्नता तो स्थूल बात है और केवल ज्ञान से सूक्ष्म है, लेकिन शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा कि देह से भिन्न है, देह देवल में रहता है पर देह से भिन्न है, राग जिसमें है किंतु राग से भिन्न है। क्यों तो हम चार ही लाइन में सब कह दें कि देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्न है, गुण भेद से भी भिन्न है पर्याय से भी पार है, तो एक क्रम से तो कहना पड़ेगा ना। तो हम कम से कम में कहें, लेकिन ये तो स्थूल ऐसा कहकर छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। और पहले यदि ऐसा शुरू करें कि केवल ज्ञान से भिन्न है, फिर राग से भिन्न है, फिर देह से भिन्न है, फिर स्त्री पुत्रादिक से भिन्न है, तो क्या हो जाएगा, काव्य की भाषा में इसे क्रम भंग नामक दोष कहते हैं मालूम। और इसके लिए जो आपके बिहारी कवि बहुत बड़ा कवि माना जाता है, नाम तो सुना होगा ना, जिसकी सत्यसई है, एक किताब लिखी उसने बिहारी सत्यसई, जिसके बारे में कहा जाता है सत्यसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। उन्हीं के जमाने में एक देव नाम का कवि हुआ बिहारी और देव, और इनकी तुलना की गई तो तुलना में सैकड़ों किताबें लिखी गई 500-500 पेज की, बिहारी बड़ा के देव, और बिहारी ने सिर्फ 700 दोहे लिखे और देव की 72 किताबें हैं, और एक एक छंद भी सब मनहन कवित्व माने 31 सवैया, एक लेन में 31 अक्षर ऐसी चार लेने उसका नाम 31 सवैया, लंबे लंबे छंद और 72 किताबें लिखी। अरे सब लोगों का 99% लोगों का मत ये रहा कि बिहारी महान कवि है, क्योंकि इसमें कम अधिक से अधिक बात को कम से कम में कहने की ताकत है। लेकिन वो बिहारी का एक दोहा ऐसा है कि उसको हमेशा दोष के रूप में ही उदाहरण दिया जाता है। कौन सा दोहा, इक्रम भंग नाम का दोष जो बनता है याद किसी को, कोई कोटिक संग्रह कोई लाख हजार, वो संपत्ति रघुपति सदा विपत्ति बिदारन हार। क्या कि कोई करोड़ों रुपया इकट्ठा करो, कोई लाखों करो, कोई हजारों करो, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो यदुपति हैं श्री कृष्ण महें वे ही मेरी संपत्ति हैं। कोई कोटिक संग्रह कोई लाख हजार, वो संपत्ति यदुपति सदा विपत्ति बिदारन हार। विपत्ति को दूर करने वाले यदुपति ही मेरी संपत्ति हैं। तो कहते देखो इतना बड़ा कवि ने इतनी बड़ी गलती की, ऐसा कहते कोई हजारों संग्रह कोई लाखों करो और कोई करोड़, तो ऐसा क्रम कहना चाहिए तो वो उल्टा कहता है, एक क्रम भंग नाम का दोष है। देखो जैसे हम आपसे कहें, देखो साहब आपको जो हमारी संस्था की चंदा के लिए 1000 रुपया देना पड़ेगा, और 1000 नहीं दे सकते तो 1,00,000 दे दो, और 1,00,000 नहीं दोगे तो मैं 1 करोड़ से कम नहीं दूंगा तो पागल माना जाएगा ना। तो क्रम एक है कि आपको 1 करोड़ देना पड़ेगा, 1 करोड़ नहीं दे 1,00,000 दो, 1,00,000 नहीं तो 1,000 देने दो, नहीं 101 तो लेके ही रहूंगा, ऐसे क्रम में बोले ना, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्रम में कैसा बोलना चाहिए। तो ऐसे ही मैं देह नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं, मैं सम्मा दर्शन नहीं हूं, मैं केवल ज्ञान नहीं हूं, एक क्रम होना चाहिए। लेकिन हम सब बिहारी जैसी गलती कर रहे हैं, सब वहां से शुरू करते हैं क्या वो इसलिए कहते हैं कोई देशना लब्धि भी है, आत्मा की बात भी है, तो यहाँ पर मूर्तता इंद्रिय से ग्रहण हो गए वो मूर्त है, और उसकी व्याख्या इन्होंने फिर आगे अच्छी विस्तार से की है, ख्याल में है ना, कई तरीके से। फिर सब प्रदेशी और अप्रदेशी का भेद भी किया है इनने, सब प्रदेशी माने किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, है ना, तो और उसको बोलते हैं नाड़ो, अणु के द्वितीय अधिक प्रदेश नहीं है तो इसलिए उसको अप्रदेशी भी कहते हैं, है? तो ऐसा बोलते हैं काल द्रव्य एक प्रदेशी है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, जीव द्रव्य असंख्या प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, है ना, और पुद्गल एक प्रदेशी है और संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है, कि निश्चय से एक प्रदेशी है, और व्यवहार से स्कंद की अपेक्षा संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी है। तो ये सारी चर्चा किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, वो सारी चर्चा ये इसमें प्रदेशी और अप्रदेशी इसका जो भेद किया है ना, उसमें इन्होंने ये चर्चा की है। ये 17 गाथाओं में इतनी विषय वस्तु जो मैंने अब आपको गिना दी, कहां से शुरू की थी, जीव और अजीव, और जीव अजीव में फिर 6 द्रव्य के नाम बताए, ये 5 अजीव द्रव्य है, पुद्गल किसे कहते हैं, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, उनकी परिभाषाएं है ना, कि जीव पुद्गल को चलने में निमित्त, ठहरने में निमित्त, आकार अवगहन में निमित्त, काल वर्तमान में निमित्त, उनकी परिभाषा जीव अजीव के भेद में की। फिर उन्होंने उनको भेद क्या किया, बता दें कितने, फिर लोक अलोक के भेद किए तो उनको समझाया, फिर निष्क्रिय और क्रियावान मतलब भाववान और क्रियावान का भेद किया, फिर गुण विशेष द्रव्य विशेष का भेद किया, फिर मूर्त अमूर्त का भेद किया, फिर सब प्रदेशी अप्रदेशी का भेद किया। तो इन समझ लो इतने चीजों में बांट कर और इन्हें द्रव्य विशेष की चर्चा की। वास्तव में द्रव्य विशेष की चर्चा में वो सामान्य जानकारियां हैं जो अपने यहां बैठने वाले लोग हैं उसमें 90% वो सारी जानकारियां जानते हैं, इसलिए अब मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। क्या ये द्रव्य विशेष अधिकार में एक ही दिन में समाप्त कर रहा हूं, और कल से ज्ञान गे विभागाधिकार कहां से 245 है ना, क्या 145 गाथा से क्या चलेगा, ज्ञान गे विभागाधिकार है ना, 300 पेज नंबर 300। अथैव गेय मुक्त्वा ज्ञान गेय विभागेन आत्मानं निश्चयन आत्मनो अत्यंत विभक्तत्वाय व्यवहार जीवत्व हेतु आलोचयति। अब गेय तत्व को कहकर मतलब गेय तत्व का उनने यहां बात खत्म कर दी, वास्तव में देखा गेय तत्व मुक्त्वा यानी गेय तत्व के बारे में जो कहना था वो हमने कह दिया, ज्ञान तत्व के बारे में कह दिया पहले अधिकार में और इस अधिकार में कह दिया गेय तत्व के बारे में। अब ये गेय और ज्ञान में क्या फर्क है और उनके बीच में सीमा रेखा क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो वास्तव में ये अधिकार इन दोनों के संदर्भ में है ना, इसलिए अलग होना चाहिए, लेकिन यहां गेय तत्व में ही उन्होंने उसे गेय तत्व महाधिकार में ही शामिल कर लिया, क्योंकि ये दोनों को कवर करता है, एक ज्ञान तत्व अधिकार को भी कवर करता है और गेय तत्व को भी कवर करता है, और दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि मैं ज्ञान तत्व हूं और मैं गेय तत्व भी हूं, जानने लायक भी हूं, उसे आया था ना कल कि मैं इस गेय तत्व में भी आत्मा की बात करते हो, जानने वाले आत्मा की बात करते हो, और ज्ञान तत्व में भी जानने वाले आत्मा की बात करते हो, तो तुम दोनों जगह एक ही आत्मा को क्यों घुसेड़ देते हो कि नहीं एक ही नहीं है। वो वहां पर जानने वाला के रूप में वर्णन है और यहां वो ही आत्मा जानने में आने वाले के रूप में उपस्थित हुआ है, तो उसे जानने वाला क्यों कहते हो, क्योंकि वो जानने वाला है, वो जानने वाला है, हमें ऐसा जानना है इसलिए वो गेय है, वो जानने वाला है इस रूप में गेय है, और पुद्गल नहीं जानने वाला है इस रूप में गए है, तो इस रूप में यहां वो उपस्थित हुआ है, ख्याल में है ना। जैसे एक आदमी है, एक अपने शादी का कारण आया, उस शादी के कारण में लड़के वाले के भी तरफ आया, लड़की वाले की तरफ से दोनों ही अपने यहां से रिश्तेदारी थी, कहीं कोई ना कोई यहां से कुछ लगते थे वहां से कुछ लगते थे, तो वो जब उधर से आए तो क्या आप कौन है? क्या मैं लड़के का मामा हूं? क्या तो उधर घुस गए दूसरी पार्टी में कि तुम कौन हो? क्या मैं लड़की का दादा हूं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकलता है ना कहीं से, तो मैं यहां दूसरी हैसियत से आया हूं इस तरफ, और उस तरफ में दूसरी हैसियत से आया हूं। समझ लीजिए दो बहनों की शादी दो भाइयों से हुई, तो पहले की तो बड़े भाई की हो जाएगी ना, तो बड़े भाई अपने छोटे भाई की बारात लेके जाएगा ना, तो छोटे भाई की बारात में गया और उधर से शामिल हो गया, तो क्यों? कि मैं अपनी साली की शादी में आया हूं, हो सकता है ना। तो दोनों पार्टियों में खड़ा है तो दो हैसियत से खड़ा है। ऐसे ये भगवान आत्मा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जानने वाले तत्व के रूप में खड़ा है, और गे तत्व प्रज्ञापन में जानने में आने वाले के रूप में खड़ा है। और चूंकि स्वभाव उसका जानना है, तो जब वो जानने में आएगा तो ऐसे ही तो आएगा कि जो जानने में जो आत्मा आ रहा है वो आत्मा जानने वाला तत्व है, जानने वाला तत्व है, इसी रूप में तो आत्मा उसे जानेगा, तो उसमें जानने का जो गुण है इस रूप में जानता है। तो इस तरह से ज्ञान तत्व और गेय तत्वों को उक्त्वा माने कहकर अब इन दोनों के अंदर में भेद विज्ञान करने की मुख्यता से सारा कथन चालू होगा।